आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरिशंकर परसाई की मार्मिक कहानी बाबू की बदली।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
निपट काले आदमी को गोरे लाल नाम की अर्थहीनता का बोझ ढोते देखकर हम अचंभे में नहीं आते। नाम और गुण का विरोध इतना सहज सामान्य हो गया है कि अच्छे उच्च कोटि के मूर्ख का सरस्वती प्रसाद नाम भी हम सह लेते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट दफ्तर के बाबू भोलाराम को जानता है उसे अवश्य अचंभा होता है। ऐसा मालूम होता है कि भोलाराम अपने नाम को सत्य और सार्थक सिद्ध करने के लिए ही जी रहा है। उसका ये नाम जन्म के समय नहीं बल्कि खूब बढ़ जाने पर दिया हुआ मालूम होता है। वो हद दर्जे का भोला आदमी था। संसार के छल कपट प्रवंचना चालाकी और चतुराई से बिल्कुल अछूता। वो सहज विश्वासी आदमी था। जीवन में शुरू से ही सीधी राह पर चलता था और ना जाने कब से हर सीधी राह पर गड्ढे बन गए हैं और हर सीधा आदमी उसमें गिरता ही है और निकलकर आगे बढ़ता है तो देखता है कि टेढ़ी राह वाला आगे निकल गया है। ये टेढ़ी राह वाले दिन में तो सीधे चलते हैं परंतु रात में चुपचाप सीधी राह पर गड्ढे खोदते हैं। इसी भोला वाले नए महकमे में उसके नए साथी तरक्की पा गए थे पर वो अभी भी वहीं था। इस छोटे से कस्बे में भोलाराम एक छोटे से मकान में रहता था। सुख और संतोष उसका जीवन ही था। वो सच्चा और चरित्रवान आदमी था। तरक्की का उसने कभी प्रयास नहीं किया। वो उसे कभी लुभावनी नहीं लगी। जितना मिलना था उसमें संतोष था और जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान संतों की परीक्षित वाणी है। उसका विवाह 4-5 साल हुए हो गया था पर अभी तक कोई संतान न थी। उसकी पत्नी सावित्री बड़ी पतिपरायणा सुशीला और साध्वी स्त्री थी। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सब स्त्रियों के बारे में सब कुछ जानने का ठेका ले रखा है और जो अपने विकृत मन की पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोलकर किसी भी जानी अनजानी के विषय में घटित और अघटित अनेक कलंक प्रसंग कह सुनाएंगे। इनकी दृष्टि अभी सावित्री पर नहीं पड़ी थी। गांव मोहल्ले में वह आदर्श पत्नी मानी जाती थी और स्त्रियों में उसका बड़ा आदर था। गरीब माता पिताओं की ये संतानें परिणय बंधन में बंध गईं तो थोड़ी कमाई में भी गृहस्थी सुख और संतोष की सांस लेने लगीं। दोनों व्यक्ति बड़े सदाचारी श्रद्धालु और धर्मभीरु थे। सवेरे शाम इस घर में भगवान की पूजा आरती होती। व्रत उपवास भी अक्सर होते रहते। शनिवार को रामायण का पाठ होता और मोहल्ले के परम आलसियों को भी खाट पर लेटे ही लेटे राम का नाम सुनने को मिल जाता। लेकिन भोला राम का भलापन उसके साथी बाबुओं से सहा नहीं जाता था। बुराई को हम कैसे धैर्य से सह लेते हैं पर भलाई हम में से कितनों को सहन होती है। भोला राम फाइलें घर पर नहीं लाता था। अन्य बाबू घर में भी फाइलों में झुके रहते थे। बस साथी बाबुओं को अप्रसन्न करने का यही कारण काफी था। बड़े बाबू भी उससे इसी कारण नाराज थे। इस बुद्धू के कारण उनकी बहुत सी ऊपरी आमदनी मारी जाती थी। इस सब राग द्वेष के बीच वे दोनों प्राणी बड़े विश्वास से जी रहे थे। इस वर्ष उन्हें एक चिंता सताने लगी थी। भोला का एक छोटा भाई था रमेश। अत्यंत तीव्र बुद्धि का लड़का था। हर साल कक्षा में प्रथम स्थान पाता था। इस साल वो 8वीं कक्षा पास हो गया था। कस्बे में इसके आगे पढ़ाई का प्रबंध नहीं था। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए लड़कों को शहर जाना पड़ता था। भोला और सावित्री को यही चिंता सता रही थी कि अब रमेश की पढ़ाई कैसे होगी। शहर में छात्रावास में रख देने की उनकी हैसियत नहीं थी। कोई रिश्तेदार वहां था नहीं और रिश्तेदार होने से भी क्या होता है। तनिक सी सहायता के बोझ से कितने रिश्तों को हमने टूटते देखा है। भोला और सावित्री दोनों रमेश को पुत्रवत प्यार करते थे। संतान के लिए माता पिता के हृदय में जो वात्सल्य संचित रहता है वो सब इसी बच्चे पर उड़ेल दिया गया था। बचपन से वो छोटा भैया कहलाता था। भोला और सावित्री की बड़ी इच्छा थी कि छोटा भैया खूब पढ़कर बड़ा आदमी हो जाए। एक दिन भोला राम बड़े प्रसन्न मन दफ्तर से लौटे। बड़े उत्साह से पत्नी से बोले, सावित्री एक तरकीब सोची है। परसों शहर से बड़े साहब दफ्तर का मुलाहजा करने आ रहे हैं। अगर मैं उनसे प्रार्थना करूं तो क्या वे मेरा तबादला शहर का नहीं करेंगे? उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। सावित्री ने कहा, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। हम एक छोटा सा घर ले लेंगे, थोड़े में गुजर कर लेंगे। फिर तो छोटा भैया BA MA तक पढ़ सकता है। पर साहब तबादला करेंगे? भोला ने कहा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कर भी सकते हैं, तबादले क्या होते नहीं हैं, कहने में क्या हर्ज है। सावित्री चिंतित सी बोली, कह देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, पर ये तुम्हारे बड़े बाबू तो टांग नहीं अड़ाएंगे। तिवारी बाबू की पत्नी कहती थी कि वो बड़ा बाबू बहुत खराब आदमी है, एक बार तिवारी बाबू को किसी झूठे मामले में फंसा दिया था, बेचारे के पुण्य आड़े आए तो जेल जाने से बचे। भोला ने भी किंचित उदास होकर कहा, हाँ वो मुझसे भी अकारण ही चिढ़ पड़ते हैं, पर इस काम में बाधा नहीं डालेंगे, आदमी इतना भी बुरा नहीं होता सावित्री। भविष्य को रंगने के लिए आदमी को कल्पना का अपरिमित रंग मिल जाए तो कौन कंजूसी करेगा। भोला और सावित्री सुखमय शहराती जीवन की कल्पना करते करते सो गए। दूसरे दिन शाम को भोलानाथ घर लौटे तो बहुत खुश थे। सावित्री से बोले, लो अब तो काम सिद्ध हुआ समझो, साहब हमारे ही घर ठहरेंगे, खाना भी यहीं खाएंगे। अभी बड़े बाबू ने कहा है, बस अब साहब को खुश करना हमारे हाथ में है, मैं सेवा करूंगा और तू ऐसा बढ़िया खाना बनाकर खिलाना कि साहब एकदम खुश हो जाएं। तेरे पकवान देखकर तो देवताओं की भी लार टपकती है, साक्षात अन्नपूर्णा है तू। भोलाराम खुशी के अतिरेक में पत्नी को छेड़ने लगे। सावित्री ने प्रसन्नता को जीतते हुए गंभीरता से कहा, वाह तुम्हारी अन्नपूर्णा दूसरे के लिए डायन भी तो हो सकती है, तुम्हारी आंख और दूसरे की आंख में अंतर भी हो सकता है। खैर दो दिन सेवा कर देंगे तो पत्थर भी पिघल जाएगा। ये अच्छा हुआ कि उन्हें यहां ठहरा लिया, पर अब मेरी फजीहत शुरू हुई। घर में सामान तो है नहीं, रमेश अभी मामा के यहां से आया नहीं, वो होता तो काम में हाथ बंटाता, पर अब सब कुछ मुझे ही भुगतना पड़ेगा। भोला ने कहा, चिंता मत करो, मुझे कल आधे दिन की छुट्टी बड़े बाबू ने प्रबंध करने के लिए दी है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सावित्री ने हंसते हुए कहा, क्या सहायता करोगे, बड़े की दाल पीसोगे, चने की दाल चक्की में फेरोगे। भोला ने भी हंसते हुए कहा, जो आज्ञा होगी वही करूंगा, एक दिन के लिए चाहो तो कहारिन को भी बंद कर दो, बर्तन भी साफ कर दूंगा। निर्मल हास्य के बीच दोनों ने यहां तक तय कर लिया कि कौन चीज शहर जाएगी और कौन नहीं, कितने किराए का मकान लेंगे, कैसा मोहल्ला होगा, कहारिन लगाएंगे या नहीं, ये सब योजनाएं रात में ही बन गईं। विवाद इस बात पर चल रहा था कि सावित्री की पत्थर की चक्की शहर जाएगी या नहीं। भोला का मत था कि वहां हर मोहल्ले में चक्कियां हैं तो इसे लादकर क्यों ले जाया जाए, और सावित्री का कहना था कि कौन चीज कब काम पड़ाए कहा नहीं जा सकता, इस कारण इसे छोड़ नहीं सकते। इसी समय नींद ने आकर इस अनिर्णित विचार को स्थगित कर दिया। उधर दफ्तर में बाहर दीवालों की और भीतर फाइलों की लीपापोती एक साथ होने लगी। भोला राम का काम पहले से ही पूरा था, वो घर बैठा पत्नी से चर्चा कर रहा था कि साहब को नाश्ता और भोजन कब दिया जाए और क्या खिलाया जाए। भोला और सावित्री कुछ इस श्रद्धा और उत्साह से तैयारी कर रहे थे मानो उनके घर भगवान आ रहे हैं। सामान्य भारतीय वैसे ही अतिथि को परमात्मा मानता है, फिर इन्हें तो तुरंत वरदान की भी आशा थी। सावित्री ने कहा, देखो साहब 10 बजे आवेंगे तो उन्हें आते ही चाय और नाश्ता देना पड़ेगा, फिर मैं 12 या 1 बजे खाना खिलाऊंगी। उतावली मत करना, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, पिछले साल वो तुम्हारे मित्र आए थे तब तुमने बैठक से रसोई तक कोई 100 चक्कर लगाए होंगे। क्यों भाई हो गया, अब क्या देर है, जल्दी करो भाई, बस ऐसा ही चिल्लाते रहे। अब ये सब नहीं होगा, मैं सुचित्त से बना लूंगी तब खिलाऊंगी। सोचो अगर कोई चीज जल्दी में बिगड़ गई, नमक ही ज्यादा हो गया तो वे क्या कहेंगे। भोला राम आज्ञाकारी शिशु की तरह उसकी हर बात मानता जाता। 9 बजे साहब की सवारी आई, बरामदे में उनके लिए तख्त सजा दिया गया था, वे उस पर बैठे। भोला राम ने चाय नाश्ता कराया, इसके बाद साहब दफ्तर की जांच करने चले गए। इधर सावित्री रसोई घर में काम पर जुट गई। 1 बजे साहब को खाना खिलाया गया, साहब खाते थे और तारीफ करते जाते थे। सावित्री किवाड़ की आड़ से सुनती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती कि उसने प्रार्थना सुन ली। भोजन करके साहब फिर दफ्तर चले गए। इधर भोला राम ने भीतर जाकर पत्नी से कहा, सावित्री तूने तो साहब को जीत लिया, बड़ी तारीफ कर रहे थे तेरे भोजन की। सावित्री ने पति के चरणों को छूकर कहा, तुम्हारी दासी हूं ना, क्या अच्छा भोजन भी नहीं बना सकती। भोला भी दफ्तर चल दिया, चलते चलते कहता गया कि अभी साहब के सामने अर्जी पेश किए देता हूं, अब तो सामान बांधना शुरू कर दो। इधर दफ्तर में बड़े बाबू की साहब से बातचीत हो रही थी। बड़े बाबू 15-20 साल तक शहर की कचहरी में काम कर चुके थे, साहब से उनका पुराना संपर्क था। कचहरी में घूसखोरी, झूठे मुकदमे, बेदखली आदि सब कार्य बड़े बाबू के मार्फत होते थे। किसी के मकान पर किसी का कब्जा करवा देते, मामले की फाइलें गायब करवा देते, वकीलों को पलटवा देते, चोरी पचवा देते। इन सब कार्यों के करने के कारण इनकी बड़ी अजब मुख मुद्रा हो गई थी। सामने खड़े हुए आदमी से बात करते करते वे पीछे खड़े हुए आदमी को बाई आंख बंद करके एक सेकंड में संकेत से सब समझा देते थे। जीवन में बाई आंख को मिचकाने का उन्हें इतना काम पड़ा था कि निरंतर अभ्यास के कारण उनकी बाई आंख कुछ छोटी हो गई थी। भोला के दफ्तर आने के पहले बड़े बाबू से इसी तरह आंखें मिचकाकर बातें कर रहे थे। दिन भर फिर दफ्तर की जांच हुई। शाम को फिर साहब को भोला ने बड़े यत्न और आदर से खाना खिलाया। खाना खाकर साहब ने भोला को पास बुलाया और बड़ी गंभीरता से बोले, देखो भोला राम, तुम अभी जवान आदमी हो, सारा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा है। अगर तुम अभी से ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? भोला कुछ समझ नहीं पाया। वो अचंभे से साहब की ओर देखता रहा। साहब ने फिर कहा, नहीं समझे? खैर खुलासा कहता हूं, मैंने दिन में तुम्हारा हिसाब देखा है, उसमें 2000 का गोलमाल मालूम होता है। हिसाब मिलता ही नहीं, 2-3 घंटे मैंने माथापच्ची की है। तुम जानते हो सरकारी पैसा है, गबन का मामला है, मैं भी आखिर नौकर हूं, क्या कर सकता हूं? 7 साल से कम की सजा नहीं होगी इसमें? भोला खड़ा खड़ा सूख गया, उसकी जीभ तालू से चिपक गई। टूटे फूटे शब्दों में वो बोला, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब बोले, मैं भी ऐसा चाहता हूं कि ऐसा ना हो, तुम्हारे काम से खुश हूं, पर रजिस्टर जो कहता है वो माना जाएगा, आदमी की बात कौन मानता है? मैं भी मजबूर हूं, कल सवेरे मुझे पुलिस को इत्तला करनी ही होगी। भोला ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे एक बार फिर से हिसाब देख लेने दीजिए, मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई होगी। साहब ने सहानुभूति के स्वर में कहा, अच्छा मैं तुम्हें सुबह तक का वक्त देता हूं, जाकर सब रजिस्टरों से रकम का मिलान करो, मिल जाए तो ठीक है वरना। भोला तुरंत भीतर गया। सावित्री किवाड़ की ओट से सब सुन रही थी, स्वामी से लिपटकर फफक कर रो पड़ी। कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब भाग्य ही रूठ गया है। भोला ने बिना कुछ बोले लालटेन जलाई और दफ्तर को चल दिया। दोनों के मुंह में भोजन का एक कौर भी नहीं गया। सावित्री फर्श पर पड़ी घंटों रोती रही, उसकी सारी सुख कल्पना जलकर राख हो गई थी। जैसे बाग में सुंदर फूलों के बीच घूमते आदमी को सांप काट ले, उसने कल्पना में देखा कि स्वामी को पुलिस वाले हथकड़ी डाले ले जा रहे हैं, वे जेल में चक्की पीस रहे हैं और रमेश तथा वह गली गली भीख मांग रहे हैं। रोते रोते उसकी साड़ी तर हो गई। इधर भोलानाथ रात भर सब रजिस्टरों को मिलाता रहा। सुबह 5 बजे गलती उसकी पकड़ में आई। एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में लेते समय 3 की जगह 5 लिख दिया गया था, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि ये 5 उसका लिखा हुआ नहीं था, किसी ने 3 को मिटाकर 5 किया है, जो स्पष्ट दिख रहा है। वो समझ गया कि ये बड़े बाबू की बदमाशी है, पर इस समय वो इतना प्रसन्न था कि बड़े बाबू पर भी उसे क्रोध नहीं आया। जैसे कुएं में ढकेल दिए आदमी को एकाएक रस्सी लटकती मिल जाए तो जीवन रक्षा की खुशी में वो ढकेलने वाले को उस क्षण भूल जाता है। भोला राम दौड़ता हुआ घर आया। भूख जागरण और चिंता से सूखे हुए मुख पर उल्लास और ईमानदारी का गर्व छा रहा था। उस समय प्रभात हुआ ही चाहता था। वो बरामदे में पहुंचा, देखा साहब जाग पड़े हैं, बिस्तर पर बैठे सिगरेट पी रहे हैं। भोला राम के बोलने से पहले ही वे बोल पड़े, अरे तुम आ गए ना, मैं किसी आदमी को भेजकर तुम्हें बुलाने ही वाला था। विचार करते करते मुझे एकदम समझ में आया कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम तो बिल्कुल निर्दोष हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अभी तुम्हारे तबादले का ऑर्डर देता हूं, कुछ तरक्की भी दिलाऊंगा। भोला राम कुछ बोल ना सका, उसने केवल इतना कहा, ये सब बड़े बाबू की, मैं देखूंगा उसे। साहब ने बात काट दी। भोला राम भीतर गए और सावित्री को ये शुभ संवाद सुनाया। उसकी आंखों से केवल 2 बूंद आंसू टपक पड़े। दिन चढ़ने पर भोला राम को बदली का हुक्म भी मिल गया। साहब को विदा करके जब भोला राम प्रसन्न मन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके साथी बाबू व्यंग्य की हंसी हंस रहे हैं। वह अवहेलना करके चला आया। बरामदे को पार करके भीतर घुसते ही वह प्रसन्नता से चिल्लाया, सावित्री चलो सामान बांधो, शहर चलेंगे। उसे उत्तर नहीं मिला। चारों तरफ देखा तो भगवान के सिंहासन वाले कोने में रस्सी से टंगी सावित्री की लाश नजर आई। लाश के ठीक नीचे एक कागज पत्थर से दबा हुआ रखा था। भोला ने खोलकर पढ़ा, लिखा था, स्वामी तुम रमेश को लेकर शहर चले जाना, मैं हमेशा के लिए विदा हो रही हूँ। अब यह तन जीने योग्य नहीं रहा।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।